महाराज की जय जय अष्टोत्तर भक्ति ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्रीमद भागवत नंदराज की जय वृंदादि तुलसी महाराण की जय समवत भक्तवृंद की जय निताय गौतमानंदे नाम श्रेष्ठ मनुमपी शचिपुत्रा मात्रा स्वरूपं रूपं तेक्षाग्रजं मरुपरिं माथुरीं गोष्ठवासीं राधाकुण्डाग्रिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्त यश्च प्रसिद्धकृपयां श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पीतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्रादिकमादितरङ्गमध्ये कृपामहीतं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावदिद्वाक्षभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सासुखानिविदचितास्तद्भिद्यस्तरिन्नभागोपजीतरुचिरिधातृष्टसारस्तव्यं दयातनुजकृपाञ्जस्तत्त्वं दीपङ्कुराणं तमखुलाभिजिघ्नं वशसो नतोऽस्मि भवे भवे यथा भक्तिपादष्टवजायते तथा कुरुषदेवेशनाथस्मृतप्रभो नाम सङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरिपरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नराञ्जैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायमुदीरयेत् नाष्टप्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवता सेवयाम् भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 11। युजंताम सूताम आदायाम जुसोदाम ग्रह संकिताम कीट सच्चयनम विप्रे सुक्ते तमाम उपाययत उरुदांतं सुतमादाय यशोदा ग्रह संकितां सीता सच्चानं विप्रे सुक्ते स्तनमपाययत उरुदांतं सुतमादाय यशोदा ग्रह संकितां सच्चयनं विप्रे सुक्ते स्तनमपाययत रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रह संकितां सच्चयनं विप्रे सुक्ते स्तनमपाययत। रुदंताम रोता हुआ सूताम पुत्र को आदाय उठाकर यशोदा माता यशोदा ने ग्रह संकिता बुरे ग्रह से भयभीत पीत सच्चयनम तुरंत ही सौभाग्य के लिए अनुष्ठान किया। विप्रे ब्राह्मणों को बुलाकर सुक्ते वैदिक स्तुतियों द्वारा स्तनम अपना स्तन अपायत बच्चे को पिलाया। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा वह सोच करके कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है। माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मण को बुला भेजा। तात्पर्य जब भी कोई संकट आ पड़ता है या कोई अशुभ घटना घटती है तो वैदिक सभ्यता का ही वह प्रथा है कि उसके शमन के लिए वैदिक स्तुतियां कराने के लिए यज्ञ ब्राह्मण को बुलाए जाते हैं। माता यशोदा ने इसे ठीक प्रकार से किया और अपना बच्चे को स्तनपान कराने लगा। शकट भंजन लीला। शकट तो पार्टी हो गया और शकट असुर भी मर गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ भगवान कृष्ण का इच्छा शक्ति द्वारा सब कुछ कार्य होता है। लोग इस विषय पर विश्वास करे वा ना करे, भगवान ने अपना बाल्य लीला स्वरूप रोना शुरू कर दिया। क्योंकि क्यों रोआ? क्योंकि लोग समझेगा इनको भी भय लगा। जब किसी वस्तु में बच्चा का डर लगता है तो रोना शुरू करता है। उन्होंने तो अपना इच्छा शक्ति का लीला शक्ति के द्वारा संपूर्ण कार्य करने के बाद लोगों में ये विश्वास कराने के लिए कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमको बहुत डर लग गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। इस उद्देश्य भगवान जब रोने लगा तब माँ यशोदा ने उसको गोद में लिया, गोद में लेकर के स्तन्यपान कराया। किसी वस्तु में जब जैसे बच्चा अगर कुछ हो जाता है तो अगर माँ का दूध पीता है तो समझ लेना चाहिए बच्चा सुस्त है, नहीं तो दूध नहीं पिएगा। गाय भैंस अगर खाने के बाद जावर काटता है, जो बोलता है हम लोग पांच बोलते हैं उसको, दोबारा रिटर्न करके जो करता है, तो समझ लो गाय भैंस सही है। ये कुछ सिस्टम है इसके लिए। इसी प्रकार जब स्तन्यपान करने लगा तो समझ गया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बच्चा को स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके शुभ अनुष्ठान कराया। अनुभवी ब्राह्मण कैसा है? अनुभवी ब्राह्मण, ऐसा नहीं है ये कोई भी ब्राह्मण हो या कुछ भी हो उनको बुला करके कार्य करना। ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए। ब्रह्म जनातिथि से ब्राह्मण। ब्राह्मण का दो भाग है, एक है वैदिक ब्राह्मण और एक है जन्मजात ब्राह्मण। वैदिक ब्राह्मण सबको बन सकते हैं अपना गुणों के द्वारा। जो ब्राह्मण का गुण है वो गुण अगर विकसित किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। जैसे अपना सनातन गोस्वामी कहा है ये कांसा का साथ अगर पारा मिलाया जाए तो स्वर्ण बनता है। जो मात्रा किसी को ज्ञान नहीं है, कितना कांसा देना पड़ेगा कितना पारा मिलाना पड़ेगा ये मालूम नहीं किसी को। तो एक दिन अगर सही तरीके से मिलाया जाए तो जो गोल्ड है ना, जिसका भाव अभी 30,000 हो गया शायद, तो घर में बैठकर बना सकते हो। तो उसी प्रकार जन्मना जायते शूद्र संस्कार आदि द्विजो उच्चते। जन्म में सब कोई शूद्र है, इस संस्कार के द्वारा लोग ब्राह्मण बन सकते हैं। और वो संस्कार कहाँ मिलता है? पहले तो गांव में चलता था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का बावजूद भी षोड़श संस्कार होता है। वो षोड़श संस्कार होने के बाद ही उसको ब्राह्मण का उपविध दिया जाता है। अभी अभी कोई कई जगह में ये संस्कार प्रचलित है। दूसरा, जब गुरु गृह में कोई भी कुल से क्यों ना आए, वो व्यक्ति उपयुक्त शिक्षा का बाद जब उनको गुणावली का विकसित होता है तब उसको गुरु महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करते हैं। वो आएगा आपको 13, 14, 15 में श्लोक में ब्राह्मण का क्या क्या गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये ब्राह्मण दीक्षा ले लिया ब्राह्मण हो गया, गुण हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुण को क्या करना पड़ेगा, अगर अपना आचरण रखे तो गुण अपना अपने प्रकाशित होगा। अगर हम कोशिश करके करने जाए हमारा ये गुण, हम ब्राह्मण दीक्षा ले लिया हमें इस प्रकार गुण का प्रकाश करना चाहिए, वो दो दिन क्या तीसरा दिन नहीं रहेगा। कितना भी कोशिश करो आप रोक नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मण का गुणावली को प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये जो दोनों प्रकार का ब्राह्मण है, एक प्रकार जो ब्राह्मण है जन्मजात जो ब्राह्मण है वो जो देवी पूजा देवता पूजा इत्यादि जो पूजा वगैरह होता है वो कर सकते करे, उसके लिए माना नहीं है। और जो वैदिक ब्राह्मण होता है जो मंदिर में दीक्षितों के द्वारा ब्राह्मण बनता है उस ब्राह्मण को वो सब कार्य नहीं करना चाहिए। उनके लिए ओनली पारमार्थिक, जैसे मंदिर प्रतिष्ठा शिविक ग्रह प्रतिष्ठा ये सब कार्य कर सकते हैं, इसके लिए सही है। लौकिक कार्यों के लिए उसको ब्राह्मण दीक्षा नहीं दिया गया है। लेकिन वो अगर इस ब्राह्मण दीक्षा का फायदा लौकिक अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किस प्रकार लौकिक कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उसको उस ब्राह्मण दीक्षा का अवहेलना किया जाता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जो बोलेगा हम भी तो ब्राह्मण बोल गए, हम भी तो यज्ञ वगैरह कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए, उसके लिए अधिकार नहीं है। जब जानना है जैव धर्म ब्राह्मण नित्य संसार और ब्राह्मण चैप्टर पढ़ लो, भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या लिखा, और इसकी ज्यादा जानकारी करना इस विषय पे, उसमें दिया हुआ है। जो भी है तो माँ यशोदा ने ये वैदिक ब्राह्मण व उपयुक्त ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण के भेद नहीं था, जब गुरुगृह में जाकर ब्राह्मण दीक्षा आ रहे जन्मजात, उस समय जन्मजात ब्राह्मण चलते थे और उस ब्राह्मण लोग इस प्रकार क्वालिफाई होता था। ऐसा नहीं है भाई अभी जैसे हम लोग का जैसे जन्म में ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण का गुनावल है नहीं, मटन भी खाता है, मछली भी खाता है, अंडा भी खाता है, दारू भी पीता है, ऐसा ऐसा ब्राह्मण नहीं था वो लोग, वैदिक सिस्टम के अनुसार उस प्रकार ब्राह्मण था। तो माँ यशोदा ने उस पर ब्राह्मण को बुलाया करके संचयन किया, मतलब भगवान का स्तुति किया, जैसे हम लोग भगवान का आरती करते हैं। आरती क्या बोलता है, आरात्रिक बा निराजन, जो शब्द आता है आरात्रिक विशिष्ट प्रकार का आरती करना है, और निराजन निर्मंचन रूप में अंजन करना। दोनों शब्द में अंतर यह है, निराजन राग मार्ग में है, आरती वैदिक मार्ग में है। जैसे बहुत लोग भगवान का दर्शन करने आता है, कौन किस प्रकार व्यक्ति भगवान को दर्शन करता है, किसका मनोभाव क्या है, कौन कैसे आरोप करता है, उस आरोपित भाव को सुधारने के लिए भगवान को निराजन किया जाता है। तो भगवान को कुदृष्टि कौन डालेगा, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे कभी वो जगन्नाथ जी का सोने लगता है तो मानेगा जगन्नाथ जी का सोने का प्रभाव पड़ेगा नहीं। पांडा लोग क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी का सोने लग गया अभी ज्यादा ही मत किया करो, तो पांडा लोग ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा भी दापर युग में जब कृष्ण प्रकट थे तो भी उनको नष्ट चंद्र का दर्शन हो गया था, तो उन्होंने बोला कलंक लगेगा। वास्तविक भगवान कृष्ण को कलंक लगा भी, वो सत्यराजित का मणि का चूरी हुआ था ना, भला बोल दिया भगवान कृष्ण ने चूरी किया है, मणि चूरी कर लिया, कि द्वारका में अनावृष्टि हुआ था, भगवान रहते हुए बारिश नहीं हुआ था। तो लोग कहते थे अगर सत्यराजित का मणि लेके आ जाए तो बारिश होगा, तो लोग ने समझा ये भगवान कृष्ण सत्यजीत को मार के मणि लेके द्वारकापुरी आ गया अपना द्वारका को बचाने के लिए। तो उस समय अगर भगवान का कलंक लग सकता है, लगा था ना कि नहीं लगा था, लगा था ना, तो उस समय अगर भगवान का कलंक लग सकता है तो अभी कोई अगर इस प्रकार उत्पन्न दर्शन करे भगवान का तकलीफ क्यों नहीं हो सकता है। जो भी ये अलग अलग विचार है, ऐसा नहीं है भगवान का कोई तकलीफ नहीं है, भक्त का भक्त जिस भाव से भगवान का सेवा करना चाहता है भगवान उसी भाव में भक्तों से सेवा लेता है। तो ये जो निराजन किया जाता है, इस निराजन का अर्थ भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति का दृष्टि से भगवान को रक्षा करना, जैसे माँ यशोदा ने किया। भगवान को ग्रह लग जाता है कि जो समस्त ग्रह का अधिपति जिसका इच्छा से चंद्र बोलते ना, वो जिनका भय से वायु प्रभावित होता है, चंद्र उड़ता है, सूर्य उड़ता है, आग जलता है, उसमें कोई ग्रह प्रभाव कर सकता है क्या। भगवान ने जब आविर्भूत हुआ तो समस्त अशुभ शुभ ग्रह ग्रह शुभ संपन्न करने के लिए एक जगह में इकट्ठा हो गया है ना, कृष्ण ने वर्णन, तो उसको ग्रह कैसे लग सकता है। लेकिन वात्सल्य रागमार्गी भक्तों लोग ये सोचते रहते हैं कि भगवान का कुछ अनिष्ट हो गया इसलिए भगवान रो रहा है, कैसे विचार के देखो। इस प्रकार जो विचारधारा, ये धारा में अभी एक नया विचारधारा सुनो, बहुत अच्छा विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रेम और वात्सल्य का सारभूत है, उनका जो लीला है भक्त वात्सल्य और भक्त प्रेम ये असमर्द है। भगवान का जगत में बहुत सारे अवतार होते हैं, मत्स्य कूर्म बराह निशिंग बामन श्रीधर, बहुत सारे अवतार होता है, और इस अवतार के द्वारा जगत में क्या होता है, परित्राणां साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साधु को परित्राण होता है, दुष्टों का संहार होता है और धर्म का स्थापन होता है, ये अवतार के द्वारा। इस अवतार बोली का अगर हम कथा का लीला चिंतन करते रहे तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष, मिश्रा भक्ति, कभी कभी शुद्धा भक्ति भी मिल सकता है। विचार देखो कैसे गौड़ीय धारा में विचार कैसे करते हैं। ईसा ईचो मत्स्य कुर्मा बराबर ये सब अवतार बोली का लीला कथा अगर पढ़ोगे, अगर सुनोगे व कीर्तन करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मिश्रा भक्ति मिलेगा, शुद्ध भक्ति मिलने से भी मिल सकता है। क्योंकि मिश्रा भक्ति या शुद्ध भक्ति अंतर क्या है? पंच तत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्ताक्कर भक्त शक्ति अंतर क्या है? एक हो गया भक्तत्व, दूसरा हो गया भक्त शक्ति। भक्ताक्कर शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति का अर्थ है रागमार्गी भक्त। इसका व्याख्या क्या? भक्ति सिद्धांत ठाकुर अनुवाच्य में चैतन्य चरितामृत। हमको भी इसमें ज्ञान नहीं होता था। जो रागमार्गी भक्त है वो भक्त शक्ति है और जो ये साधारण सब भक्त वो भक्ताक्ष में आ जाता है, शुद्ध भक्त सब। ये इसका विचारधारा है। तो ये मिश्रा भक्ति इसलिए कहा गया है कि चतुर्विधो मुक्ति पाया वैकुंठ से जाए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये चार प्रकार का मुक्ति शुद्ध भक्ति में गिनती नहीं करता है क्योंकि ये किसी आशा रहता है। आशा लेके जो भक्ति किया जाता है, जो भगवत धाम जाता है, वो शुद्ध भक्ति में गिनती नहीं होता है। तो कौन सा शुद्ध भक्ति है? जिसमें कोई आशा नहीं है। गोपी लोग कुछ आशा करके कृष्ण से प्रेम करते थे क्या? गोपी लोग का अंगराग भी कृष्ण सेवा में प्रयोजित होता है। क्योंकि गोपी लोग ये सोचते थे अगर हम अच्छी अच्छी कपड़ा पहन के अच्छी भाव में जाऊं तो कृष्ण हमें देख के खुश हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? कृष्ण का खुश करने के लिए। उसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य इस प्रकार रहना चाहिए जो हमारा सब कुछ कार्य के द्वारा भगवान कृष्ण खुश रहे। ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें जिस कार्य के द्वारा भगवान खुश ही हो जाए। ते जो अवतार लोक है, इस अवतार का कथा चिंता करने से यह लगता है ब्रज प्रेम एकमात्र कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो ब्रजजातियों प्रेम पाने के लिए कृष्ण का ब्रजजातियों जो लीला विलास है व ब्रजजातियों जो शिव विग्रह है उस विग्रह का अर्चन अगर किया जाए व उस कथा का लीला चिंतन किया जाए तो ब्रजजातियों प्रेम मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इतना सारा स्कंद होने के बावजूद भी दसम स्कंद को 90 चैप्टर दे दिया, 90 चैप्टर। बाकी सब एक एक तुम्हारा स्कंद में एक लीला भी है, दो लीला भी है, किसी में तीन भी है, ऐसा करके देखे गया। लेकिन कृष्ण लीला, ओनली कृष्ण लीला दसम स्कंद 90 चैप्टर। विचार करने जाएगा तो बहुत सारा विचार, और विचार का सुनने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं है इसलिए उसका आगे इतना ज्यादा विचार हम नहीं करेंगे। तो श्रोता भी होना आवश्यक होता है। उस योग्य श्रोता अगर ना भी हो तो उस श्रोता का सामने ये सब चीज बोलना भी अच्छी नहीं है। तो जाने दो जो भी है। तुम्हारा जो श्रोता ने एक यार ये हमारा निराजन है। निराजन का अलग अलग अर्थ है। वैदिक निराजन ये है जो लोग अशुभ दृष्टि के द्वारा भगवान का आक्रमण ना करे, ये एक निराजन है। और एक निराजन है जो सिस्टमेटिक वैदिक सभ्यता ने कहा है भगवान के इसका निराजन करना चाहिए। हर निराजन का अलग अलग अर्थ है। अगरबत्ती का अलग अर्थ है, दिया का अलग अर्थ है, कपूर धूप का अलग अर्थ है, वो शंख पानी का अलग अर्थ है, वो जो हाथ में कपड़ा है इसका अलग अर्थ है, फूल का अलग अर्थ है, चामर का अलग अर्थ है, मोरपंख का अलग अर्थ है, शंख ध्वनि करता है इसका भी अलग अर्थ है। दिस इज पार्थिव पुजारी इसको कहते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी की जय। ये सब अर्थ ज्ञान इसलिए कहता है कृष्ण स्वरूप और शक्तित्रय ज्ञान जार है तार नहीं कृष्ण थे अज्ञान। पूरे संबंध ज्ञान को परिस्फुट होना चाहिए। जब तक संबंध ज्ञान परिस्फुट नहीं होगा तब तक भजन क्या करेगा? तो अभी अगला अगर हम क्लास दिया तो उसमें क्या हो रहा था, नाम भजन प्रणाली। यदि यहाँ फिनिश करो इसको, नहीं तो ये भी रह जाएगा। नाम भजन प्रणाली, गौड़ीय धारा में भजन क्या है? गौड़ीय धारा में भजन क्या है? नाम। गौड़ीय धारा में भजन है नाम। भजन है मध्य श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण धरे महाशक्ति, तार मध्य श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोले पाए प्रेम धन। अपराध रहित भाव में अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। 64 साधनांग में पंच श्रेष्ठ है मथुरावास, नाम संकीर्तन, भागवत पाठ, श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन और साधु संग, ये श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब करने चार जो है नहीं भी हो सकता है। मथुरावास, पैसा भी चाहिए, रहने के लिए योग्यता भी चाहिए, तो वहां तो बिना खा कर रह नहीं सकते, बाबा जी तो हूं नहीं, तो नहीं होगा। मन में मथुरावास हो सकता है, मन इतना पावरफुल है क्या? श्रीमूर्ति सेवा, सेवा तो सब कुछ करता है, अगर श्रद्धा ना हो तो कोई काम का नहीं है। ये सबसे ध्यान रखने का जरूरी है। श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान का अर्चन करते हैं तो भी अर्चन होगा, अगर अश्रद्धा पूर्वक अर्चन करते तो अर्चन नहीं होगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए बोला है श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवा। भागवत पाठ, अगर हम पढ़ा लिखा नहीं है तो भागवत पढ़ पाएंगे क्या? विष्णु नहीं पढ़ सकते, पढ़ा लिखा नहीं है तो भागवत पढ़ नहीं सकते हैं। भागवत सुन सकते हैं, अगर वक्ता उपयुक्त तो ना हो तो सुनने से क्या लाभ होने वाला है? जैसे नाम में अपराध है, जो उच्चारण करता है वो अपराधी है, नाम तो शुद्ध है, तो नाम में कभी भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन उच्चारणकारी व्यक्ति में अपराध है, इसलिए कहते हैं नाम अपराध है। तो अगर वक्ता सही सलामत ना हो, निराग वक्ता, सराग वक्ता, वक्ता दो क्वालिटी का होता है, जो किसी आशा लेकर के बात पाठ कीर्तन करता है उसको बोलता है सराग, उससे अगर सुनोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। निराग वक्ता जो ऑनली कृष्ण प्रीति कामना, उससे सुनोगे तो कुछ काम होने वाला है, ये निराग वक्ता और सराग वक्ता। तो भागवत अगर हम सुनने जाए तो भी हमारा इस प्रकार विचार करना पड़ेगा। अब इस प्रकार विचार युक्त हो तो भी हो सकता है। और भगवान का अर्चन करना, फूल लिखाओ, चंदन घिसो, ये लाओ वो लाओ, सबका बस का बस, हमारे इस्कॉन में चलता है, इस्कॉन हाई फाई है, ये भगवान का सेवा कर सकते हैं। बाकी सबको इतना आसानी से भगवत सेवा नहीं कर सकते, घर में विग्रह रख के भी लोग परेशान हो जाता है, अरे बाबा क्या करो, ठाकुर जी क्या सेवा है, लोग घर में ठाकुर जी को लॉक करके भाग जाता है, ठाकुर जी तुम एक गिलास पानी है जो सिंगदाना खाते रहो, मैं मिदनामल से घूम के आता हूँ, ये ठाकुर जी सेवा, ये सेवा नहीं होता है। ठाकुर जी तो तुम घूमने जा सकते हो, ठाकुर जी को लेकर नहीं जा सकते हो, ठाकुर जी भी साथ में लेकर झोला में बांधो और ठाकुर जी से वृंदावन जाओ, तभी प्रीति होगा ना। तुम तुम्हारे लड़का घर में लग करके जाओगे, तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होता है? टाइम पास, इसलिए अर्चन में फल नहीं मिलता है। प्रीति किधर है? प्रीति वस्तु बोल के किधर है, बोलो प्रीति किधर है? प्रीति है ही नहीं है, लेकिन सब गृहस्थ ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। तो प्रीति श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, नहीं तो जब तक प्रीति नहीं होगा, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति शालग्राम के लिए एक तुलसी पत्ता उठा के लाता है उसका हाथ पवित्र हो जाता है, बोलो तो हम वहां से तुलसी पत्ता लाने के लिए जाने को तैयार नहीं है, तैयार है नहीं है, हम जाना नहीं चाहते वहां से तुलसी पत्ता उठा के भगवान को ला के दूं, नहीं हमारे पास बहुत टाइम है, नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं कर सकते प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो ठीक है, तू रहो इधर, सेवा का परिभाषा कौन जानता है? जय जन कृष्ण भजे सेवल चतुर, ये सेवा का परिभाषा सीखना चाहिए। इसलिए ना कृष्ण समस्त अवतार, बाकी अवतार बोली जिस प्रकार सबको वशीभूत करके ले जा दिया है, मत्स्य कुर्म बरा निश्चित जितना सारा है सबको वशीभूत करके ले जा दिया है, लेकिन कृष्ण स्वयं वशीभूत होकर के ले जा दिया है, ये अवतार कृष्ण मंत्र है। कृष्ण वशीभूत हो चुका है, फिर लीला कर रहा है, लेकिन बाकी जितना अवतार है लोगों को वशीभूत करके लीला कर रहा है। एक कृष्ण में और बाकी अवतार में अंतर है, इसलिए उस अवतार का सेवा करने से स्वर्ग मुक्ति मिश्रा भक्ति कभी कभी शुद्ध भक्ति, लेकिन इस कृष्ण का सेवा करने से सदा सर्वदा शुद्ध भक्ति मिलता है। समझ में आया दोनों का अवतार का कृष्ण का अंतर? ये गौड़ीय विचारधारा है, क्योंकि कृष्ण ने सबको कृष्ण वशीभूत हो गया, कृष्ण अपर किसी को वशीभूत नहीं किया, कृष्ण खुद वशीभूत हुआ। उठो उठेगा, बैठो बैठेगा, नाचो नाचेगा, ओला लाएगा, उठाओ जो भी कब लोग वही सुनेगा। ये इसलिए कृष्ण लीला इतना उपादेय है, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, जगत को कृष्ण नाम देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आया। ये महाप्रभु का महावदान्य है, कृष्ण कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम निरुपादे नाम लीजिए पाए प्रेमोधान, अपराध रहित होकर कृष्ण नाम लिया जाए। ये बोला क्या गोविंद, ये अपना क्या बोलता है, विष्णु नाम लो, नृसिंह नाम लो, राम का नाम लो, बा मत्स्य नाम लो, कुरमो नाम लो, बोला क्या? रूप गोस्वामीपाद ने क्या किया, उन्होंने कहा अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम, नॉट विष्णु अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन अनुकूल भाव से करोगे उत्तम भक्ति है, बाकी सब उत्तम भक्ति नहीं है, भक्ति है। इसलिए कृष्ण, इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण नाम दिया। ये जो कृष्ण में ये हरे कृष्ण महामंत्र में तीन नाम है, क्या क्या है, हरि कृष्ण राम, जय जय राम कृष्ण हरि, ये हरि कृष्ण राम। तो हरि शब्द क्या है, अगर अनिच्छा कृतो भी हरि इस शब्द का कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो उसको समस्त पाप नष्ट हो जाता है, अगर इच्छा कृत करे तो भगवान में भक्ति होता है, अनिच्छा कृत करने से जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ आपि विनाश मायाति विनानो भोगे अपेतु नाम स्फुरन तत्ते पर निकर्मेति विरोधि भेदा। योग ध्यान तपस्या के द्वारा पारब्ध नष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो पारब्ध अपारब्ध पाप बीज कुटस्थ इतना सारा पाप है सब ध्वंसीभूत हो जाता है। अपेतु नाम स्फुरन तत्ते पारब्ध कर्मते विरोध वेद, वेद शब्द मतलब नष्ट, उसका जन्म मतलब उसका जन्म ही नहीं होगा, उगेगा ही नहीं। इसलिए अनिच्छा कृत भाव में अगर कोई व्यक्ति हरि नाम को उच्चारण करते हैं, भागवत शास्त्र क्या कहते हैं, वेद ही रामायण चैव आद्य अंते हरि इति अक्षर, जो व्यक्ति हरि ये दो अक्षर का उच्चारण करते हैं, वेद रामायण महाभारत जितना सारे शास्त्र सब पढ़ लिया, दुनिया में जितना सारे शास्त्र है हरि इस नाम को उच्चारण करने से शास्त्र पाठ उसका हो गया। एक हरि शब्द करते हैं, जिसको अगला बार उदाहरण दिया था रत्नाकर दस्यु, हरि नाम को उच्चारण किया उसके बाद वाल्मीकि बन गया, लेकिन एक ख्याल रखो रत्नाकर दस्यु जिस दिन राम नाम को उच्चारण किया तो उस दिन के बाद कोई पाप किया था क्या? लेकिन हम अगर उच्चारण करके पाप करते रहे तो हमारा होने वाला है क्या? ये विचार करने लायक है, हरिभजन करने के लिए विचार पुराण होना आवश्यक है, और विचार करने का शक्ति तो हरिभजन क्या करेगा, विचार जानना जरूरी है और विचार करना भी जरूरी है। तो जिस दिन रत्नाकर ने हरिनाम का उच्चारण किया उस दिन हरिहरि करते रहा, बड़ा बड़ा दूसरा कुछ भी नहीं उसका, तो रत्नाकर ने वाल्मीकि बन गया। बेस्या कौन, जो रामचंद्र खान ने भेजा था हीरा लक्ष्य हीरा जिसका नाम पड़ गया, जिस दिन से लक्ष्य हीरा अपना हरिनाम लेना शुरू किया उस दिन से बेस्यावृत्ति करने लगा क्या? छोड़ दिया, रोज तीन लोग को ही नाम जप, हरिदास ठाकुर के बाद वही एक है, बाकी जगह माधाई और ये लोग है गोस्वामी लोग एक लोग को। अरे सोचो जो विच्छावृत्ति में रहता था जिसको त्याग करना इतना आसान नहीं है, जो व्यक्ति या जो स्त्री एक बार परपुरुष व परस्त्री में आसक्त हो जाएगा वो वहां से लौट के नहीं आ सकता है, आसान नहीं है। जिस प्रकार घास जब उगता है उसको उसी समय अगर उठाओगे तो फुस करके उठ जाएगा। एक बार अगर जड़ जमा लेता है तो उठेगा, लेकिन क्या लेके उठेगा, मिट्टी के साथ उठेगा। ये है, एक बार अगर कोई इसमें आसक्त हो जाता है तो समझ लो उसका जिंदगी। लेकिन हरिदास ठाकुर का ऐसा कृपा है जो उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। आज छोड़ करके रोज तीन लोग को हरिनाम जप करने लगा, तो हुआ हरिनाम का प्रभाव। तो हरिनाम अगर कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाके प्रेम भक्ति लाभ करता है। ये एक होरी का बच्चा है, ध्यान से सुनो, जरूरी है बहुत, जो हमारा बाद में इसका और आगे बताएंगे कैसे कैसे हरिनाम जप करना है। हम नहीं बताएंगे, भक्तिवन ठाकुर ने कहा है, हम कहने वाला कौन है, हम इतना जानकारी थोड़ी हमारे पास, शक्ति है क्या, अनुभव है क्या, अनुभव नहीं है। हमारा काम क्या, आचार्यों का वाणी एज इट इज सुनाना। जो आचार्य लोग कहे हैं उनका वाणी को बिना तोड़ मलोड़ के जैसे कहा वैसा ही सुना देने का, तो हमारा क्या हो जाएगा, आचार्य सेवा हो जाएगा, गुरु सेवा बोलते हैं जिसको, आचार्यों का सेवा होगा। आचार्य अगर सेवा हुआ तो आचार्य क्या बोलेगा, नहीं ये जो वाणी दे रहा है हमारा बैच को दे रहा है, इसके ऊपर कृपा हमें करना चाहिए, ख्याल रखो। इसको बोलता है साधु संग, इसको बोलता है साधुओं का संग। तो दूसरा हरि शब्द का अर्थ क्या है, जो समस्त अवतार का भी मौन को हरण कर सकता है। जितना सारे अवतार है उस समस्त अवतार का भी मौन को हरण कर सकता है, इसका नाम है हरि। जैसे द्वारिका कृष्ण जब द्वारिकापुरी में ब्रज कृष्ण का अपना पिक्चर देखा, छवि, तो द्वारिका कृष्ण क्या बोला, मैं इस कृष्ण का आलिंगन करना चाहता हूं। ललित माधव में विदर्भ गांधव नाटक में है और अपना चैतन्य चरितमृत में रूप अपना हरिदास रूप शिक्षा में है, हरिदास ठाकुर का आलय में जब रूप गोस्वामी बैठा हुआ था तब दो शास्त्र रचना किया था, उस समय विचार किया गया था अपना सिद्ध बकुल में। तो वहां समस्त अवतार स्वयं द्वारकाधीश भी ब्रज कृष्ण का आलिंगन करने की इच्छा प्रकट किया, ये हम चाहता हूं ये रूप किसका है, हमारी इच्छा होती इसको आलिंगन करने के लिए। तो ब्रज कृष्ण का इतना महत्व है तो इसलिए कहा गया है कि समस्त अवतार का भी अगर द्वारिकाधीश भी आकर्षण हो सकता है तो मत्स्य कुरुम बराह का क्या फर्क पड़ता है। महापुरुष कौन, कारणपक्ष विष्णु, उनको कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा हो तो द्वारका पुरुष से उठा के लाया, किसको उठा के लाया, ब्राह्मण बालक को। ये ब्राह्मण बालक को उठा के इसलिए लाया, जब कृष्ण यहां आएगा तो हम दर्शन करेंगे, हम जाए जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कारणपक्ष विष्णु वहां से आ नहीं सकता है, इसलिए उनको बुलाने के लिए उन्होंने एष्टी की रचना किया। तो वहां से उनको लाने के लिए ब्राह्मण बालक को चुरी किया, और ब्राह्मण ने क्या सोचा, आई बोलो ब्राह्मण बालक किधर गया, ब्राह्मण बालक मुक्त हो गया, और मुक्ति देने वाला स्वयं भगवान है, उन्होंने स्वयं जन्म से जैसे पैदा हुआ वैसे ही वहां से उठा के ले जाकर के मुक्त कर दिया और मुक्त धाम में लेके गया। ब्राह्मण ने क्या सोचा, द्वारिकापुर के भक्ति के धाम में यहां से अगर हमारा संतान मुक्त हो जाएगा तो उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं, उसको भक्ति करना चाहिए, उसको रिटर्न लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने विचार किया कि हमारा संतान को यह द्वारिकापुरी में जो अगर द्वारिकापुरी में आकर मुक्त हो जाएगा यह सही नहीं है, यहां भक्त बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जाकर कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया, क्या अर्जुन को रहा नहीं गया, कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलकर जाके उनका भी इच्छा पूरा हुआ, ब्राह्मण का भी इच्छा पूरा हुआ, अर्जुन का भी इच्छा पूरा हुआ। क्या विचार किया देखो आचार्य लोग, ऐसे ऐसे विचार आता है भागवत में, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार, विचार न पर भक्त्या विमुच्य न रहो। भागवत विचार करो, कैसे विचार करेगा, गोष्ठी जिसको बोलते हिस्ट गोष्ठी, भक्त गोष्ठी, भक्त गोष्ठी में भागवत विचार करने से आनंद आता है। ये चार कुमार श्रीमद भागवतम दशम स्कंध आशी अध्याय, चार कुमार चारों को चारों प्रबंध देने में कोई कमी नहीं है, सबको प्रवचन दे सकता है, कोई थोड़ा सा भी मंत्र है एक पैसा कोई नूनो नहीं है, सब समान है। लेकिन उसमें से वो लोग एक प्रवचन दिया बाकी सब सुनने लगा, ये भक्त गोष्ठी है। तो हरि क्या हुआ, सब अवतार का भी मौन का हरण करते हैं, ये भी एक हरि शब्द करते हैं। और दूसरा क्या, जितना सारे जगत वासी सबको प्रेम के द्वारा अपना उनका मौन को हरण कर लेता है, जगत में जितना सारे व्यक्ति है जो भी कृष्ण कथा का श्रकित भाव में श्रवण करेगा, श्रकित निष्पाप भाव में बात श्रद्धा सकल श्रवण करेगा, वो भी कृष्ण में आकर्षित हो जाएगा। रुक्मिणी, यज्ञ पत्नी, मथुरा का नारी लोक, वो सब कृष्ण कथा इधर उधर सुना था, पुलिंदी रोमिनी रोमोनी जबराज में इधर सुन के वो लोग कृष्ण में आकर्षण हो गया था, लेकिन ब्रह्मा ने सुनने के बाद भी आकर्षण नहीं हुआ, ब्रह्मा विचार करने आ गया। तो समस्त माधुर्य के द्वारा आकर्षण करते हैं। दूसरा अर्थ हरि शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, संबोधन में हरे, हरे शब्द ब्रह्म संगीत में कहते हैं, जो स्त्री अज्ञात पूर्व प्रेम और स्नेह द्वारा हरि का मन को आकर्षण करता है उसे हरे कहते हैं। इसके लिए हम लोग को पूर्व राग प्रणय मान इधर जाना पड़ेगा, उज्जवल निर्मल व्याख्या है इसमें। पूर्व राग, कोई किसी को देखा नहीं, सुनने से आकर्षण होता है, जैसे किसी व्यक्ति के सामने बा किसी स्त्री के सामने पुरुष का अच्छे सुपुरुष का गुणगान किया जाए बा अच्छी सुंदर स्त्री का गुणगान किया जाए तो दोनों दोनों में आकर्षण होने लगता है, लेकिन कोई किसी को देखा नहीं, इसको बोलता है पूर्व राग। ये समझाने के लिए बोलना पड़े हैं, पूर्व राग समझेगा क्या है, क्या है पूर्व राग, जब किसी का वर्णन किया जाए उसमें जो आकर्षण होता है उस आकर्षण का पूर्व राग कहते हैं, ये राधा कृष्ण का पूर्व राग। तो जो अज्ञात पूर्व प्रेम और स्नेह के द्वारा हरि को भी आकर्षण कर सकते हैं उसका नाम है हरे। तो हरे कौन है, वृषभानु नंदिनी राधा रानी। तो हरि शब्द की व्याख्या याद रहेगा सबको, याद रखो। दूसरा कृष्ण, कृष्ण शब्द आगम शास्त्र अनुसार कृष्ण शब्द का क्रिस और न, क्रिस शब्द का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षक, और न शब्द का अर्थ क्या है, चरम और परम निष्पत्ति आनंद में है, ये नौ शब्द का अर्थ है, सबको आकर्षण करके उसको चरम और परम आनंद प्रदान करेगा। चरम मतलब लास्ट स्टेज, इसका उद्धार कोई आनंद है नहीं है, और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। चरम और परम में जो आनंद प्रदान करता है वो है कृष्ण, और कृष्ण शब्द संबोधन में भी कृष्ण आएगा, इसका आगे कुछ कुछ नहीं, जैसे हरि शब्द का संबोधन में हरे, उसका कृष्ण संबंध का संबोधन में कृष्ण है। और आगम शास्त्र में शिव जी कहते हैं राम शब्द का अर्थ, रा शब्द उच्चारण करने से क्या होता है, हृदय में जितना पाप है सब भाग जाता है, और म शब्द का जैसे उच्चारण उसमें क्या हो जाता है, खिड़की लग जाता है, कपाट लग जाता है, तो बाहर जितना पाप बाहर होगी ना अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, ये राम शब्द का अर्थ है। पुराण सकल भी कहा है राम शब्द का अर्थ वही है जो अपराजित प्रेमलीला का भगवान है, जो सर्वदा अपना नित्य क्रियासंगी से राधिका का साथ गुढ़ प्रेमलीला में युक्त है, उसको राम शब्द कहा जाता है। राम शब्द का अर्थ दासरथी राम और बलराम नहीं है, ये ख्याल रखो, राम और बलराम और दासरथी राम लगाओगे, परशुराम लगाओ, राम भूत है, एक परशुराम भी है, एक दशरथ राम है, एक बलराम है, बहुत सारे राम है। इसलिए लव कुश ने पूछा था आप कौन सा राम है, जब युद्ध करने गया था ना, बोला राम मैं राम हूं, तो कौन सा राम है आप, ये है चक्कर। यही राम शब्द का अर्थ है। तो नाम भजन प्रणाली, जब नाम भजन करना है तो सब अर्थों का अलग अलग देखा जाएगा। तो अभी हरे कृष्ण टाइम भी हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी हरे हरे और हरे हरे, आगे पीछे देखो हरे हरे है, इधर भी राम राम है, उधर भी राम राम, एक कृष्ण कृष्ण है। आगे कितना कृष्ण है, तीन, हरे कितना है, दो, पीछे भी वही है। तो ये हरे क्या किया, कृष्ण को बांध के रखा, कृष्ण हरे से बाहर नहीं जा पा रहा है, कृष्ण हरे से बाहर नहीं, इसलिए कहते हैं राधे क्या चरण रेणु भूषण करिया तेनु अनासे पावे गिरिधारी। राधा रानी का चरण रेणु जो अगर हृदय में भूषण किया जाता है तो गिरिधारी कुछ आपको गिरिधारी की ढूंढना नहीं पड़ेगा, गिरिधारी खुद आएगा। इसलिए कृष्ण को हरे यार वो राम को हरे ने बांध के रख दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो कितना विचार प्रणाली है देखो, तो ये सब विचार प्रणाली। आगे कहते हैं प्रेम का उन्नत स्तर का जो भक्तबिंद है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवणार कीर्तन सदा सर्वदा करते रहते, किससे, जपमाला का सहायता के द्वारा। अपना हाथ में जो माला रहते हैं उस माला में सदा सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण और कीर्तन करते रहते हैं। आज जब स्मरण और कीर्तन करते हैं तब ये नाम का जो अर्थ इसको अनुसरण करता है, भक्ति करना है ना। जब हरि नाम उच्चारण करते क्या होता है, माइंड में दूसरा चिंता आता है, आता है ना। अगर इस चिंतक हम उस का जाएगा में जो हरि नाम का जो अर्थ हमें बताया इसको अगर चिंता किया जाए तो कितना अच्छा पॉइंट दिया। कुछ ना कुछ चिंता होते ही रहता है जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, तो उसको अगर भगाना है तो हमें क्या चिंता करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और ये विचार रखो हरि शब्द पापी व्यक्ति को उद्धार करता है, हरि शब्द को आकर्षण करता है, ये विचार रखो। कृष्ण शब्द क्या है, सबको आकर्षक है और चरम और परम में श्रेष्ठ आनंद प्रदान करते हैं। राम शब्द का अर्थ है जो कृष्ण और आधारण के साथ सदा सर्वदा लीला करते हैं। ये चिंता करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो, आपका दुश्चिंता चला जाएगा, नाम में प्रेम मिल जाएगा, भगवत धाम चला जाओगे। हुआ, नाम भजन कैसे करना है, इसको बोलता है नाम भजन करने का प्रणाली। जानकारी था किसी को, इस प्रकार करके अगर नाम हम करते रहेंगे, नाम का अर्थ आलोचना करो और हरि नाम का श्रवण और कीर्तन करो तो उठपटांग चिंता अपना भाग जाएगा और हरि नाम में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भक्ति ठाकुर ने कहा है रसना मानसे करह नियोग क्रमे वैधि अनुसरी रागानुगा हया ब्रज वास करी शरण कीर्तन कर एनिखिल काल करह जापन उपदेश सार धर हारू गोसाई दया करी कवे दिवे दिने ब्रजवासा रागत्गा तुम तब उपदान को हई चेदासर आशा। शरण कीर्तन कर क्रम विधि अनुसरी, शरण और कीर्तन, कीर्तन करने से जीहा, शरण करने से मन और श्रवण कान, हरे कृष्ण जीहा बोलेगा, कान सुनेगा, हाथ चलेगा, तीनों को रखो सही, जो बोलते हैं उसको सुनो, उनका कीर्तन करो, जीहा कान और हाथ तीनों साथ में चलता है तो समझ लो नाम हो रहा है, नहीं तो नाम नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं बहु जन्म पर यदि श्रवण कीर्तन तबु कृष्ण पदे नहीं प्राय प्रेम धन। 30 साल लगाओ, 40 साल लगाओ, 50 साल लगाओ, 100 साल लगाओ, अगर इस प्रकार नाम कीर्तन व शरण करते रहेगा तो नहीं पाए प्रेम धन, नहीं मिलने वाला है। लेकिन वाल्मीकि को तुरंत मिल गया था और वो बेच्चा हीरा को तुरंत मिल गया था, क्योंकि वो लोग उस दिन से सब कुछ छोड़ दिया था। ये नाम भजन प्रणाली है। अभी जो नाम प्राप्त हुआ है वो दो प्रकार का व्यक्ति है। दीक्षा लेते हैं ना, एक दीक्षा का पूर्व में नाम जप करते हैं, उसमें प्रेम नहीं मिलेगा, है कभी भी प्रेम नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग सुख आराम से। प्रेम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरु अवज्ञा रूप अपराध, वो दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। तो दीक्षा नहीं लेना अर्थ क्या हो गया? गुरु अपराध हो गया। तो तीसरा नाम नाम अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा। इसलिए नाम प्रेम नहीं देगा, मुक्त कर देगा। मुक्ति हो सकता है, सर्व मिल सकता है, विशेष सुख मिल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। प्रेम मिलने के लिए गुरु चरण में आश्रय ग्रहण करना एकांत कर्तव्य है। आज हो सकता है दीक्षा लेके क्या करेंगे? हरिनाम करते रहेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, वो मतलब मुक्त होगा, स्वर्ग मिलेगा, विषय मिलेगा, भक्ति नहीं मिलने वाला है। देखो अपराधी है। तो नाम लेने के बाद व्यक्ति दो भाग में विभक्त होता है। एक होता है जो नाम का जप का प्रारंभिक अवस्था है, और एक सिद्ध अवस्था। अब ये प्रारंभिक अवस्था भी दो भाग होता है, प्रारंभिक और दैनिक। और जो नित्य सिद्ध है, भाई अपना सिद्ध दशा जो है वो नित्य मुक्त पुरुष है, वो अप्राप्त देह लाभ किया है। जैसे भक्ति सिद्ध ठाकुर बा भक्ति न ठाकुर गौर किशोर दास जी महाराज, ये सब क्या है? नित्य सिद्ध गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करिमाने से जाए ब्रजेंद्र सुतपात। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेश लिया, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेश लिया। इसको लास्ट में भूल गया, मन याद नहीं। जो भी है, जो गौरांग का मधुर लीला जिसका कर्ण में प्रविष्ट हुआ है, तो चैतन्य चरण में पादार कीर्तन रोज करना चाहिए। जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय। क्या क्या शब्द दिया देखो, ये गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। गृह बा बने थे थके हागौरांग बोले राखे नरोत्तम बाजता संग। ये गृहस्थ और ब्रह्मचारी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भजन अगर करता है तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ श्रेष्ठ है, अगर भजन नहीं करता है तो सन्यास भी कुछ काम का नहीं है। जय भजे सही बड़ो अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल्यादि विचार। भजन करोगे तो आश्रम सही है, भजन नहीं करोगे आश्रम कुछ भी काम का नहीं है। प्रतिष्ठा सा आशा सुकोरेर विष्ठा नापेलो रावण जुझिया राघव। तो जो प्रतिष्ठा है ना, यही लाभ होगा। भजन करेगा तो आश्रम सही है, भजन नहीं है आश्रम कुछ काम का नहीं है। जय भजे से ही बड़ो, ये भजन का है। ते अप्राकृत आध्यात्मिक पारलौकिक की देह लाभ किया है। जो प्रारंभिक भक्त होता है वो संख्या नाम करते करते संख्या वृद्धि करने जाता है, और नाम में नैरंतर जो लाभ करता है, और जब नाम में नैरंतर जो लाभ करेगा तो उसका उच्चारण प्रात्यहिक हो जाएगा। प्रारंभिक भक्त का नाम में रुचि इतना नहीं होता है, क्योंकि उनका कुछ अविद्या रहता है। अविद्या जो जिसके द्वारा वो नाम का उच्चारण करने में उसका इतना रुचि नहीं होगा, लेकिन तुलसी माला के द्वारा निरंतर अगर संख्या नाम जाप करता है तो उसका भी अविद्या दूरीभूत होकर के अविराम गति लाभ करता है, और उसका भी नाम उच्चारण दैनंदिन हो जाता है रेगुलर, और वो भी नाम का प्रति उसका कुछ श्रद्धा होता है। इस अवस्था में जो साधक नाम करता है वो चुपचाप बोझ के रह नहीं सकता है, लेकिन हम चुपचाप बोझ के रह जाते हैं, रहता है ना। जिसका नाम में रुचि होगा वो चुपचाप बोझ के रह नहीं सकता है, लेकिन हम चुपचाप बोझ के रह जाते हैं, इसका मतलब हमारा नाम में रुचि नहीं हुआ। सही है, ये बैरोमीटर है, थर्मोमीटर बैरोमीटर वो अलग अलग मीटर है ना, ये अपना मीटर है। हम भक्त की भक्त बन रहे हैं कि भक्त बनने का प्रयास करें देखने के लिए, हमें कोई उद्धार करने वाला नहीं है। आप ये मत सोचो जब हमको उठा करके बोलेगा प्रभु जी आप गाड़ी में बैठो वृंदावन जाओ, कोई ले जाने वाला नहीं है, आपको खुद को जाना पड़ेगा, कोई साथ में ले जाने वाला नहीं है। और आपको जाना है तो आपको खुद चलना पड़ेगा और खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तो भी आप जा सकते हो। ये मेहनत किससे होगा? शास्त्रों के द्वारा। सिद्धांत तो जाने जितते ना करो अलस, यह जहते कृष्ण जागे सुधीर मानस। सिद्धांत तो जानने के लिए अगर अलस बन जाओगे तो कृष्ण भक्ति नहीं होगा, इसे अलस नहीं बनने का, सिद्धांत तो जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब सिद्धांत तो जानेंगे ये सब ज्ञान जो हमारा होगा तो हम भी तो करेंगे नहीं, हमें भजन करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए इधर नहीं आया हूं। अगर हमारे विचार हम तो सुनने के लिए आया हूं, प्रसाद तो मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं होगा, तो हम सुते रह जाएंगे। भजनकारी व्यक्ति उसका निद्रा नहीं होता है। जैसे किसी का पैसा गिर जाए, पैसा तो गिर गया दो चार रुपया नहीं, समझ लो किसी का गोल्ड गिर गया, गोला का चैन तीन भरी का चैन गिर गया रास्ते, उसका हाल क्या होगा? तीन भरी भरी एक लाख पर हमारे चैन गिर गया। इस प्रकार हमें भी हाथ बसाना चाहिए, अरे समय फालतू जा रहा है, हरिनाम नहीं हो रहा है, फालतू जा रहा है, हरिनाम हो रहा है, फालतू पक पक कर रहा है, हरिनाम नहीं हो रहा है। इस प्रकार जब हरिनाम में रुचि होगा तब नाम में नैरंतर्य आएगा, और नाम में जब नैरंतर्य आएगा तब पाप का मूल, पाप का बीज, पाप करने का इच्छा, अविद्या अपना आप दूरीभूत हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी इसके बाद आगे बोलेंगे, बहुत बहुत सारे हैं, आज इतना तक रहने दो। तो अभी हम लोग आज क्या सीखा, जब तो हरिनाम उच्चारण करेंगे तो नाम का जो अर्थ है उसको मन में अगर रखेंगे तो जड़ चिंता हमारा दूरीभूत हो जाएगा और नाम में नैरंतर्य आएगा। ये पहले बोले भारी लगेगा, पहले एक मार एक एक 108 में होता है ना, एक करने में पहले तकलीफ होगा, लेकिन पहले चार करो, चार नाम में करो, फिर 10 नाम में करो, फिर 20 नाम में करो, फिर पूरा एक माला में करो, फिर दूसरा माला में करो, फिर तीसरा माला में करो, फिर चौथा माला में करो, ऐसा अगर एक करते करते बढ़ाते जाओगे ना एक दिन 16 माला में आ जाएगा। पहले एक नाम उच्चारण करो एक बार, उसको इस प्रकार करो, फिर दो नाम उच्चारण करो उसको इस प्रकार करो, फिर तीन नाम उच्चारण करो उसको इस प्रकार करो, ऐसा फिर एक माला में ऐसा करो, फिर दो माला में करो, ऐसा धीरे 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 अगर हम करते रहेंगे तो आस्ते 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 हमारे नाम में नैरंतर्य आ जाएगा, तब हम प्रारंभिक से प्रात्यहिक बन जाएगा और जो बोलेगा वो सुनेगा, और उसी समय काठी हमारे आगे पीछे जाएगा। ये नहीं किसी में राम भाग गया, किसी में कृष्ण भाग गया, किसी में हरे भाग गया, इसे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जॉब करेगा सुनो बोल के, ध्यान से सुनोगे ना देखो ना किसका किसका क्या क्या भाग रहा है, अब ध्यान लगा के सुनना, किसी को हरे भाग जाता है, किसी को कृष्ण भाग जाता है, किसी को राम भाग जाता है, उसको पकड़ के रखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। वो 16 नाम होना चाहिए ना, 32 अक्षर होना चाहिए ना, अगर राम भाग गया तो एक शब्द और दो अक्षर भाग गया तो 16 नाम बोला क्या? तो भागने के बजाय ध्यान लगा के नाम जप करना चाहिए, ऐसे करेंगे तभी होगा। चलो हरे कृष्ण।